कबीर साहब ने कहा कि बादशाह ये क्या कहता है शेख तकी। सिकंदर लोदी ने कहा कि ये कहता है कि मैं जब मानूंगा कबीर को कि ये शक्ति युक्त है अल्लाह है कि मेरे सामने कोई मुर्दे को जीवित कर दे। मैं वहां नहीं गया था रामानंद के आश्रम में और मैंने नहीं देखा इसने कोई मुर्दा जीवित किया है। और सिकंदर लोदी कह रहे हैं कि जब मैंने बताया कि मैं खुद जलन के रोग से ग्रस्त था तो मेरे साथ ही रहता था, तेरे से कुछ नहीं हुआ, इस परवरदिगार ने सप्रस मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, फिर भी इसकी बुद्धि में नहीं आती दाता, ये तो राग द्वेष और महिमा का भूखा व्यक्ति है। अब मेरी आप ही रक्षा करो मेरे राज्य की। कबीर साहब ने कहा कि इसे कह दो कोई मुर्दा ढूंढ लावे और तेरा पीछा छूट जावे। सिकंदर लोदी ने कहा कि जाओ पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। पीर जी कहने लगे शेख तकी कि कहां से लाऊं मैं मुर्दा, कभी होगा जो बता दूंगा जब देखूंगा इसको। इतने में क्या किया मालिक ने, एक 13 वर्षीय बालक की एक लाश शव, 13-12 वर्षीय बालक का शव उस दरिया में बहता हुआ आ रहा, काफी दूर से दिखाई दिया। और शेख तकी कूदने लग गया, वो आ गया मुर्दा, अब कर देना जिंदा, वो आ गया मुर्दा, अब जान जाऊंगा ये कई दिन से मरा हुआ है, बहता हुआ आ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पहले आप कोशिश कर लो। उपस्थित सैनिक भी इकट्ठे हो गए और भी दर्शक आसपास के आ गए। सिकंदर कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले आप कोशिश करो कहीं बाद में नंबर बनावे। उपस्थित जनों ने भी कहा कि हाँ शेख तकी आप पहले कोशिश करो। शेख तकी फू फू जंतर मंत्र करता रहा, वो आगे चला गया डाउन स्ट्रीम में लगभग 202 फरलांग अर्थात 700 गज, इतना आगे चला गया। तो उसने शेख तकी कहने लगा कि कभी मुर्दे जीवित होते हैं, इससे नहीं होना था ना, तभी तो मुझे लगा दिया, इतना वो जा चुका है कितनी दूर, ये सोचा बला टल गई। कबीर साहब ने कहा कि आप विश्राम पाओ शांति करो। कबीर साहब ने ऐसे ही इशारा किया था अपने हाथ से ऐसे उल्टा, तो वो मुर्दा जो आगे चला गया था सब अपने आप वापस अपस्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर जा रहा था विपरीत दशा को, और कबीर साहब के सामने आके ऐसे जैसे नौका चलती ऐसे आके रुक गया और नीचे से लहर जा रही है ऊपर वो सब रुका हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा झांबी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय उस बच्चे का शरीर सारा कांपने लग गया और बिल्कुल एकदम खड़ा हो गए और चरणों में बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर के। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब शेख तकी की दमा मर गई, उस पर गड़ों पानी गिर गया और उपस्थित जनों ने बड़ी खुशी मनाई, कहा कमाल कर दिया मालिक आपने, कमाल कर दिया दाता। उस लड़के का नाम कमाल रखा और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में उसको रखा। अब ये प्रमाण कबीर समर्थता का है, कबीर साहब की समर्थता का है कि वो मुर्दे जीव की आयु भी बढ़ा सकता है, प्रथम प्रमाण। फिर पहुंच गए दिल्ली में, आ गए दिल्ली में आके शेख तकी ने तो वो चाल फिर चली कि कहीं इस कबीर की तो और महिमा बनेगी और ये प्रत्यक्ष प्रमाण लड़का साथ जीवित सब मान जाएंगे इस बात को, बड़ी बड़ी आत्माओं को अब सबको यकीन हो जाएगा परमात्मा है। उसने सोचा इससे पहले और सकी मिला दूं, जाके कह दिया कि राजा तो एक जादूगर को साथ लाए हुए है, कहते हैं एक लड़का मुर्दा जीवित कर दिया, वो सदमे में था और सदमे में ऐसे हो जाता है, वो तो ऐसे हो जाता है, ये तो बहकाता है, ये जादूगर है, राजा को बहका लिया है, तो भाई राजा तो गया काम से, ये तो हिंदू होने वाला है, काफिर को साथ लिए फिरता है, तो भोली आत्मा मुसलमानों को फिर बहका दिया। तो सभी मुसलमान कहने लगे पीर जी क्या करें, आप हमें बताओ, जैसे कहोगे हम तैयार हैं आपके साथ। शेख तकी ने कहा भी बात संभाल लो ना तो बात बिगड़ जाएगी, राजा हिंदू हो गया तो सबको हमने हिंदू बना देगा, ये जबरदस्ती बना देगा, इसका भी इलाज करो। शेख तकी से पूछा उन मुसलमानों ने, बताओ जो कहोगे हम ऐसे आपके साथ तैयार हैं, कि ऐसा करो तुम चलो मेरे साथ काफी संख्या में। राजा से कहेंगे अगर ये सिद्ध परमात्मा तुल्य है और परमात्मा है अल्लाह है जैसा तू मानता है तो इससे हमारे सामने कोई मुर्दा जीवित करवा दो। और उस समय कहेंगे, शेख तकी कहता है कि मेरी लड़की जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है 10-15-20 महीने से, कई महीनों से, और कब्र में है, उसको अगर जीवित कर देगा तो कहेंगे हम मान लेंगे। शेख तकी ने सोचा एक तीर में दो शिकार, लड़की जीवित होगी तो मेरी, हारेगा तो कबीर हारेगा, है ऐसे सोचकर। तो बूढ़ी आत्मा मुसलमान कहने लगे ठीक है चलो ऐसे ही कहेंगे। सिकंदर लोदी के पास हजारों की संख्या में मुसलमान एकत्रित होकर आ गए और आगे शेख तकी तुर्रा फरफराया उसका। शेख तकी अंदर गया और पहरेदारों से कहा कि राजा से कुछ व्यक्ति मिलना चाहते हैं। राजा को संदेशा मिला, पता चला कि हजारों की संख्या में नगर निवासी आए हैं और कोई खास बात है। राजा ने कहा कि 10-5 व्यक्ति मौजूद से अंदर आ जाओ, मेरे से बात करो। शेख तकी भी और दो उसके पढ़ाए हुए मुसलमान वो अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप किसी यानी हिंदू को साथ रखते हो, हिंदू पीर को, और वो आपने हिंदू धर्म स्वीकार करने की चेष्टा हो रही है और वो कोई जादूगर बताया है, हमारे सामने कोई वो ऐसी लीला करे तो हम उसको मान जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर वो अल्लाह तुल्य है और कोई शक्ति युक्त संत है तो हम भी देखें, और हम चाहते हैं कि शेख तकी की लड़की को जीवित कर दे तो हम मान जाएंगे। शेख तकी कहता हम सब मैं भी मान जाऊंगा कि वो भगवान है अल्लाह है, मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है काफी दिन से, और नहीं तो फिर हम बगावत करेंगे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा तो यूं था कि खुशी मनावेगा कि मुर्दा जीवित कर दिया अब तो मान गया होगा, उसके विपरीत और नई चाल चल दी। सिकंदर लोधी मायूस होकर कबीर साहब के उस कमरे में पहुंचे जहां पर कबीर साहब को आदर से राजा ने विश्राम के लिए रोका बैठा रखा था, यानी आसन दिया हुआ था। मायूस होकर बैठ के उनके चरणों में जाके जानी जान कबीर साहब ने कहा कि क्या बात राजन, कोई राजकाज में दिक्कत आ गई क्या, बहुत मायूस नजर आ रहे हो। सिकंदर लोदी ने कहा नहीं परवरदिगार, आप बैठे सिर पे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो शेख तकी है ना मेरा गुरु, ये मुझे जीवन जीने नहीं दे रहा, जब से मैं स्वस्थ हुआ हूँ इसका आग लगी हुई है, ये तो मुझे दुखी देखकर प्रसन्न रहता था, मैं रोता रहता था, इसके गिड़गड़ाता था, इसको 100 रुपये 50 रुपये रोज देता था, ये कहता मैं जंतर करूंगा, रात को मंत्र करूंगा, है तब तो ये प्रसन्न था, और अब मैं स्वस्थ हो गया और मुझे भगवान मिल गया, इसका आग लगी दाता, अब हजारों की संख्या में मैं बौड़ी आत्माओं को बहका कर ले आया और कहता है ये राजा काफिर हो गया, ये मैं जब जानू मेरे सामने और मेरी लड़की को अब मुर्दा करके दिखाओ जो कब्र में दबा रखी है। उस लड़का तो सदमा में आया हुआ था, ऐसे हो ही जाता है। कबीर साहब कहने लगे चिंता ना करो, इसने मुझे तो जीने नहीं देना है, दुखी करना ही करना राजन, पर ऐसे कह दो इस शेख तकी को कि आप मुनादी करवा दे सारे आसपास के क्षेत्र में कि आज से तीसरे दिन वो लड़की कब्र से निकाल कर जीवित की जाएगी। राजा खुश हो गया, जो कह दिया मालिक ने सत्य है। उसने कहा भी ठीक है, परवरदिगार ने कहा है राजा और मेरे मालिक ने अर्थात कबीर साहब ने कि तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी और सब जगह मुनादी करा दो, किसी का और शक ना रह जा। उस निश्चित दिन को लाखों और हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हो गए, कब्र फुड़वा दी। कबीर साहब ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले पहले, कहीं फिर बाद में नंबर बनावा। उपस्थित जनों ने कहा कि दाता ये अगर इसके पास कोई शक्ति होती अपने बच्चे ने कौन मरने देवे और कौन कब्र में डाल है, ये तो फेल है, आप दया करो। कबीर साहब ने कहा शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। फिर कहा शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा नहीं हुई, तो शेख तकी ने नाचना शुरू कर दिया, भंगड़ा पा दिया, क्या बात कही, देखा ना ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, कभी मुर्दे जीवित होते और शो करे। कबीर साहब उस बेवकूफ ने नचाना चाहते थे, वो खूब नाच लिया ना, भगड़ा पा लिया, अपने पुत्री की, अपनी पुत्री के जीवित होने, न जीवित होने की का गम नहीं, कबीर साहब के हार जाने की खुशी मनावे, अपनी बेटी नहीं जीवित हुई इसका तो गम नहीं होना चाहिए था, दुख के वजह इतना वजह की खुशी होती, और उसके विपरीत कबीर साहब हारते दिखे ना वो खुशी मना रहे, नो नाचर भंगड़ा पावे। कबीर साहब जब वो नाच लिया ना खूब भंगड़ा पा लिया, जब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब नू करके खड़ा बोल क्या बात है। कबीर साहब ने कहा हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर शव में और बाहर आ जा। उसी समय उस लड़की में ऐसे कंपन हुआ और वो लड़की जीवित होगी और चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया, बोलो कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ भगवान कबीर देव की जय। कबीर साहब ने कहा कि बेटी जा अपने पुत्र अपने पिता के साथ, पुत्री ये तेरे पिताजी शेख तकी हैं। तब उस लड़की ने कहा कि ये मेरा पिता नहीं है, ये तो दुश्मन है समाज का, ये सबको गुमराह करा भगवान के साथ टक्कर दे रखी तूने नादान, तो काहे का पीर है, पीर वही है जो पर पीर जाने, और इसका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका, मेरी आयु इससे आगे नहीं थी, ना मेरा मनुष्य संस्कार था जन्म का, मैं तो अब 84 में जाने की तैयारी हो रही थी मेरी, तो ना जाने कहां का दुख उठाती, ये दया करी मेरे दाता ने। उस समय शेख तकी ने सब उपस्थित लोगों ने कहा कि आपने कमाल कर दिया कमाल कर दिया, उस लड़की का नाम कमाली रख लिया, वो भी 12-13 वर्ष की लड़की थी, अपनी बेटी की तरह कबीर परमेश्वर ने अपने पास रखा और लड़की ने शेख तकी के साथ जाना मना कर दिया, और उस समय 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने, कबीर परमेश्वर की रजा थे उनको दिव्य दृष्टि दी दाता ने। अपने पिछले 3 जन्म बताए कि मैं भी पहले राबिया नाम की लड़की थी और 4 वर्ष मैंने कबीर परमेश्वर का उस समय नाम लिया था जब ये आए हुए थे, कभी ऐसे प्रकट हो जाते हैं ये कभी ना कभी, ये वही परमेश्वर हैं। और 4 वर्ष के बाद मैंने वो सत भक्ति त्याग कर अपनी मुसलमान साधना प्रारंभ की थी और मैंने एक कुतिया को भी अपने बाल पाड़ कर उसके रस्सी बनाकर कपड़े उतार कर और कुएं से पानी निकाल कर उस कुतिया को प्यास बुझाई थी, उसके लिए मेरे लिए मक्का भी उठकर वहां आ गया था, मैं फिर भी मुक्त नहीं हुई। दूसरी बार मैं बांसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ था मुसलमान धर्म में और मैं बहुत भगतनी थी, बड़े अच्छे गीत गाया करती, परमात्मा के अच्छे अच्छे राग सुनाया करती थी और मैंने मक्का में अपनी गर्दन भी चढ़ा दी थी, मैं फिर भी मुक्ति ना हुई। तीसरा जन्म मेरा एक वैश्या का हुआ था, वैश्या का जन्म भोग का, चौथा जन्म मेरा कमाली का हुआ था, इससे पहले मेरा तो शेख तकी के घर में मेरा जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु मेरी बकाया थी मनुष्य शरीर की, जो पहले मेरे 4 साल की सत भक्ति के कारण मुझे 4.5 मनुष्य जन्म भी मिल गए थे, लेकिन इस सत भक्ति के बिना जीव का गुजारा नहीं हो सकता। कबीर परमेश्वर हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रसनहार हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, बोलो कबीर साहेब की जय। अब थोड़ा सा प्रकरण आपको ये दूंगा कि ये राबिया कौन थी जो फिर बाद में कमाली बनी और मर्त कमाली को कबीर परमेश्वर ने जीवित किया। ये राबिया मुसलमान धर्म के अंदर इस प्यारी पुत्री का आत्मा का जन्म था। पिछले जन्म जन्मांतर के ये शास्त्र अनुकूल साधक जो पहले वेदों के अनुसार सभी साधना किया करते थे, उस समय ना हिंदू था ना मुसलमान सिख ना ईसाई, हमारे पूर्वज एक थे, हम एक पिता की संतान है। अब कलयुग में काल ने हमारे साथ ये चाल चाली है कि कहीं अब ये पार ना हो जाए, क्योंकि कलयुग में यहां से निकलने का काल के जाल से छूटने का बैन उठा हुआ है। ये लड़की बहुत श्रद्धालु थी, प्रभु की तलाश थी, आत्मा निर्मल थी इसकी। एक दिन कबीर परमेश्वर ये अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने कब प्रकट हो जाएं, और यही परमेश्वर आकर के अपनी सच्ची लगन वाली पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में लेकर के सत भक्ति करवाते हैं। इस राबिया नाम की लड़की को जब ये अनमैरिड थी कुंवारी थी, ये दयालु परमेश्वर आए और कहा बेटी क्या नाम है तेरा, इसने बताया मेरा नाम राबी है। कबीर साहब ने कहा बेटी भक्ति भगवान की करनी चाहिए, अल्लाह का भजन यदि हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत दुख उठाना होगा, 84 लाख दुनिया भोगनी होगी। लड़की ने पहले तो काफी चर्चा की कि हमारे मजहब में कहते हैं कि मनुष्य जो मनुष्य जीवन है इसके समाप्त होने के बाद अन्य दुनिया नहीं होती और हम कब्र में दबा देते हैं और फिर कभी कयामत आवेगी तब ये जीवित होंगे, सब जीवित हो जाओगे। कबीर साहब ने कहा बेटी वैसे तो ठीक है जैसे ही आपने सुन रखा है, आप तो उस पर आधारित हो, पर आधारित जब तक हो जब तक आपको सही ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए ये कब्र में जितने भी आपके पूर्वज हैं ठीक है इनके शरीर हैं और ये आज सारे ही जीवित हो जाएं, चलो कयामत अब ला दूं एक मिनट में मैं कबीर साहब, क्योंकि कयामत भी कबीर साहब ही ला सकते हैं। तो फिर क्या होगा, क्या ये अपने पूर्वजों को आप अपने घरों पर रख लोगे, वृद्ध हो जाना। अब भी कोई वृद्ध हो जाता है बूढ़ा दादा दादी उसकी मुश्किल हो जाती है, हमें उसका कोई बीमार हो जाता है या कोई तकलीफ हो जावे उसका दस्त लग जावे है? तो हम ये सोचे भगवान इसकी मिट्टी संगवा ले, हे अल्लाह इसको उठा ले। और वो बूढ़े बूढ़े जो सारे जीवित हो गए वे को 80 साल का को 200 वर्ष का को 250 वर्ष के कैसे मार लोगे उनको। फिर हंसने लगी वह कहने लगे जी ये बात तो आपकी ठीक है। कबीर साहब ने कहा बेटा वो जीवात्मा चली गई अपना जीवन पूरा करके, अब वो नहीं आएंगी और अपने हिसाब से फिर उनका पुनर्जन्म होता हुआ आ रहा है और जो साधना सही है वही करनी चाहिए। तो लड़की ने बताया कि हम सही साधना करते हैं, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जो रास्ता बताया इसके समान इस पृथ्वी पर कोई मार्ग नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तब कबीर साहब ने कहा बेटी ठीक है, हजरत मोहम्मद जो है बहुत प्यारी आत्मा थी, प्रभु की अच्छी आत्मा थी, वो हमारी ही आत्मा थी, लेकिन वो काल के हाथों चढ़ गई और उस काल ने उस प्यारी आत्मा को पहले गुमराह कर दिया, अपने दूत भेज के अपने फरिश्ते भेज के बाई फोर्स डरा धमका के और अपने दुखा को ऊपर किए नकली लोक उस मेरी प्यारी आत्मा को इसने फिर अपने चरणों अपने ही नशे में रख दिया। जब उसमें थोड़ी बहुत भक्ति हुई तो 6-7-10 शादियां करवा दी और फिर वो बेचारा मेरी बात को नहीं माना, मैं उनसे मिला था और मैं पूर्ण परमात्मा अल्लाह हूँ। वो कहने लगी नहीं जी अल्लाह आकार में नहीं आ सकता, अल्लाह तो निराकार है। कबीर साहब ने कहा बेटिया के बताऊं तेरे तह, तुम्हारे जो ये अब वर्तमान गुरु है ना मुल्ला और काजी ये पीर, इनको स्वयं मालूम नहीं इस कुरान शरीफ में क्या लिखा है, इस पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र कुरान के अंदर कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 नंबर और आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, उसी ने सारी सृष्टि को रचा और उसी की भक्ति हमने करनी चाहिए, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो वो संत बताएंगे, तो मैं उसकी खबर बताने आया हूँ जो कुरान शरीफ में लिखा है। और जिसको हजरत मोहम्मद अल्लाह मानते थे वो स्वयं कह रहे हैं कि उस संत को ढूंढो जो इसकी सही खबर जानता हो और वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। पवित्र बाइबल में प्रथम बार ही लिखा है उत्पत्ति में, उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर कि वो परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो कौन है, वो कबीर है। और उस परमात्मा ने 6ठे दिन के सृष्टि रचना में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही तुल्य बनाया, अपना ही रूप बनाया, अपना ही स्वरूप बनाया। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा आकार है, वो निराकार है ही नहीं। निराकार तो उसकी शक्ति है, उसने अपनी सत्ता से सबको रोका हुआ, सबको अपनी ही शक्ति से सबको चलायमान किया हुआ है। तो नहीं मानती है, काफी देर फिर सत्संग सुनाते हैं प्रभु, फिर वो लड़की मान जाती है, कहती है प्रभु फिर क्या करूं, हम तो रोजे भी रखते हैं। बेटी रोजे रख लो या ना रख लो इससे कोई लाभ नहीं, यदि हम खाना ना खाने या खाएं उससे क्या लाभ होगा। कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, हुआ किसी की इंद्रिय पर कंट्रोल, 6-6 शादी करें नरे बच्चे पैदा करें, कौन सी इंद्रिय पर कंट्रोल हुआ, मांस खावे ये तो कंट्रोल नाम से होगा, प्रभु भक्ति से होगा, सत भक्ति से होगा और संतों के ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से होगा। फिर ये जहर दिखाई देगा, अपने आप इंसान से दूर हो जाएगा। और कहते हम तो ईद और बकरीद इनको तो भोजन वो प्रसाद रूप में खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटी मांस नहीं खाना चाहिए, प्रसाद तो हलवा बना लो, खीर बना लो उस दिन, बढ़िया पूरी तारो और बर्फी बना लो, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, ये मांस खाना है नहीं बेटा, प्रभु नाराज होगा। कहीं नहीं लिखा मांस खाने की। ये जो बाद में फरिश्तों ने गुमराह कर दिया आपके पूर्वजों को, उन प्यारी आत्माओं को, वो मांस को छुआ भी नहीं करते थे। और हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, तो अब बनावटी बातें बना करके उनको भी कहते होंगे, लिख दिया होगा कि आप पे आप, वो कभी मांस नहीं खाया। वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, 180 को सौगन दिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180 को सौगन दिन नहीं कर चलाया। अरस कर उस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। 180,000 अनुयायी हुए थे मोहम्मद जी के, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, कसम है उनको, मैं कसम खाकर कहता हूँ। तो लड़की को विश्वास हुआ, अब ठीक से महाराज जी बिल्कुल नहीं खाऊंगी मांस, ठीक है आप रस्म मनानी है अपना, जाइए मस्जिद में जहां मना रहे हो, लेकिन बैठ कर अपने मंत्र दूंगा, उसका जाप करते रहिए। उस लड़की ने उपदेश ले लिया और लगभग 4 वर्ष तक बिल्कुल डट कर साधना की, फिर वह जवान होगी। लड़की ने यहां तक सोच लिया था राबी ने कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, प्रभु पाऊंगी, अपना जीवन सफल करूंगी। लेकिन ये समाज जो है काफी बंधनों में बंधा हुआ है। माता पिता को चिंता हुई कि कुंवारी लड़की शादी से मना करती है, कैसे रखेंगे जवान लड़की को घर पे, ये नहीं हमारे बस की बात है। जब लड़की ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, दोनों माता पिता बैठकर खूब रोते हैं, बहुत रोते हैं, अल्लाह सदबुद्धि दो इस मेरी पुत्री को, ए मालिक या क्या कहानी बन गई हमारे जीवन में, बहुत परेशान हुए। 6 महीने तक ऐसे रोते रहे, बुरा हाल कर दिया। तब राबिया ने सोचा भी ये तो माता पिता की तो बहुत बुरी हालत होगी। तब राबिया ने सोचा कि माता पिता का तो बुरा हाल हो गया और कहा ठीक है माता पिता मैं शादी करवा लूंगी। लड़की ने सोचा कि मैं अपने पति से बात करूंगी, जाके उससे फैसला कर लूंगी, शादी होगी एक बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े ऑफिसर से, बहुत नेक आत्मा था, प्रभु से डरने वाला था। शादी होने के बाद राबिया ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। राबी के पति ने कहा कि बोलो क्या बात है। राबिया ने कहा कि मैं शादी जरूर करवा ली है, लेकिन मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, ये मेरा फर्स्ट एंड फाइनल डिसीजन समझना, ये मेरा अंतिम और प्रथम ये मेरा फैसला है। यदि आप मुझे मजबूर करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी। वो बहुत नेक आत्मा था। राबिया के पति ने कहा कि राबिया आपने निकाह कबूल क्यों किया। राबिया ने बताया कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने निकाह कबूल कर लिया, मेरे पिता ने बहुत बुरा हाल कर लिया था, रो रो के मैंने उनसे मना कर दिया था शादी का, 6 महीने तक ना खाना खाया और बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो गए थे, समाज के डरते हैं, अपनी इज्जत और बेइज्जती के डरते हैं। तब मैंने उनसे कहा था ठीक है अब शादी करवा लूंगी मैं, इसलिए मैंने निकाह कबूल किया था, अब मैं शादी नहीं करूंगी। अब आप सोच लो अगर मेरी हत्या चाहते हो तो सुबह मेरा जीवन नहीं मिलेगा आपको। वो बहुत दयालु था, वो कहने लगा भाई मैं क्यों पाप का भागी हूँ, पर ठीक है राबिया एक बात आप सुन लो, जैसे आपके माता पिता का समाज और इज्जत थी ऐसे हमारा भी है, आपने समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी रूप में रहना होगा और मेरी तरफ से तो मेरी बहन की तुल्य होगी, लेकिन घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। वो कहने लगी मुझे मंजूर है, या अल्लाह बड़ी सुनी है कबीर अल्लाह, अल्लाह कबीर बड़ी सुनी आपने। اس پیاری آتما ان کے پتی نے رابعہ کے لیے الگ مکان بنا دیا اور دو سیوکائیں چھوڑ دی. جب رابعہ ہوگی اور اس نے سوئم اپنی دوسری شادی کروا لی. جب رابعہ ہوگی 50 اور 52 سال کی آیو کی اور دیکھا کہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی, پرفو بھکتی میں لین رہتی ہے اپنا جیسا بھی کریا تھا, کیونکہ اس نے وہ کبیر صاحب کی بھکتی تیاگ دی تھی, پھر ویسے ہی روزے عید بقرعید سارے منانے لگی تھی اور نماز بھی روز پڑھتی تھی, قرآن شریف کا بھی پاٹھ کیا کرتی تھی, ایسے پرارمبھ کر دیا. جب 52-53 ورس کی ہو گئی, ایک دن اپنے پتی سے کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں, یدی آپ آگیا دو تو. وہ کہنے لگا میں کیوں منع کروں, آپ جا سکتے ہو, آپ جائیے مکہ میں, بڑے شوق کے ساتھ جائیے, کہو تو آپ کے لیے کوئی اونٹ گاڑی یا اونٹ کا پربند کروا دوں. وہ کہنے لگی, رابعہ نے کہا نہیں میں پیدل جاؤں گی اپنے پربھو کے لیے. رابعہ وہاں سے پرستھان کر دیتی ہے. رستے میں جب جا رہی تھی ایک سنسان جنگل میں ایک کنواں تھا, کنویں پر نہ بالٹی یعنی کوئی پاتر نہیں تھا پانی نکالنے کا اور نہ ہی کوئی رسا. آس پاس کوئی گاؤں بھی نہیں تھا, کوئی نگر نہیں آس پاس سے 2-4 کلومیٹر تک پہلا. وہاں ایک کتیا بہت پیاسی تھی اور وہ کبھی رابعہ کے پیروں کی طرف آوے اور کبھی کنویں کی طرف جھانکے, کبھی رابعہ کے پیروں چرنوں کی طرف آوے کبھی کنویں کی طرف جھانکے, ایسے مانو کہہ رہی ہو کہ میں پیاسی ہوں مجھے پانی پلا دے نہیں تو میری مرتیو ہو جائے گی, اتنی پیاسی. اور ساتھ میں اس کے معصوم بچے وہی پر گھوم رہے. رابعہ نے دیکھا کہ کتیا مرے گی ساتھ میں یہ پورا پریوار مرے گا, ہے مالک یا کون بنی, نہ آس پاس کوئی جل نکالنے کا پاتر ہے نہ کوئی رشا ہے. لڑکی نے آو دیکھا نہ تاو دیکھا, اپنے بال پاڑے, اپنے بال ایسے کھسا کھس پڑ گئے اور لہو لوان ہوگی اور اتنی لمبی رسی بنانی پڑی کیونکہ پہلے پانی بہت گہرا ہوتا تھا کنووں میں. اور اپنے ہی کپڑے اتار کے اور ان کو پھر کنویں میں نیچے جا کے بھگویا اچھی طرح اور پھر اس کو باہر نکالا. ایسے ایک مٹکے کا مٹکا پھوٹا ہوا آدھا حصہ کنویں کے ساتھ رکھا تھا اور اس میں وہ پانی نچوڑ دیا ایسے کپڑے اور پھر نکالا, پھر نچوڑ دے, پھر ڈبو, پھر نچوڑ دے اور کتی کے منہ کتیا کے منہ پر ڈالا. یعنی بہت پیاسی تھی, بہت پانی پیا بیچاری نے. اس پرکار کتیا کے پانی پی لینے کے اپرانت سوئم بھی اپنی پیاس بجائی انہی کپڑوں کو نچوڑ کے اور پھر وہ سر اپنا لہو لوان جو ہو گیا تھا ان گیلے کپڑوں سے پوچھا, پھر پانی میں ڈالا, پھر وہ کپڑے دھوئے, پھر وہ کپڑے پہن لیے. پہن کر کپڑے پھر سوچا کہ اپنی منزل کو طے کروں ارتھات مکہ کی طرف پرستھان کروں. اتنے میں مکہ اپنے ستھان سے اٹھ کر وہ پوری بلڈنگ اور کنویں کے ساتھ میں آ کے ایسے لگی جیسے ریل گاڑی پلیٹ فارم پر لگتی ہے. رابعہ جو ہی نے مکہ دیکھا ایک دم مکے میں پرویش کیا. اس رابعہ پیاری آتما کے پرویش کرتے ہی مکہ وہاں سے اٹھ کر چل پڑا. جس میں مکہ اپنے ستان سے اٹھ کر گیا وہاں بڑے اطرز کی بات ہوگی کہ مکہ کہاں گیا, وہ مکہ کہاں گیا, سب جگہ چرچا کا وشے بن گیا. کچھ دیر میں دیکھا کہ مکہ جہاز کی طرح آ رہا ہے اور اپنے ستان پر آ کر ٹک جاتا ہے. اس میں دیکھا کہ اس میں ایک لڑکی نکلے جس کا نام رابی تھا. پھر اس نے ساری کہانی بتائی, کیا بات ہوئی, کیسے مکہ آپ کو لینے چلا گیا. کہتے تین منزل, بارہ کوس کی ایک منزل لگ بھگ ہوتی ہے 20 میل ارتھات 60 میل اور تین منزل 24 کلومیٹر 36 کوس 12 کوس 20 میل لگ بھگ ایک منزل ہوتی ہے. تین منزل سے مکہ رابعہ کو لے کر آیا. تب رابعہ نے بتایا کہ ایسے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, ایک کتیا پیاسی تھی اس کو اپنے بال پاڑ کے جل پلایا تھا کنویں سے نکال کے رسی بانٹ کے. رابعہ کی مہیما سارے مسلم کنٹری میں بہت پھیل گئی، اور کہا کہ بھکتی ہو تو رابی جیسی، بھکتی ہو تو رابی جیسی۔ اب وچار کرنا بھکتاتما، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس پیاری آتما نے چار ورس ست بھکتی کی تھی، اس کا ہی پرتیفل پربھو دے رہا تھا، اور وہ سوچ رہے تھے تو جو روزے رکھتی ہے، تو نماز پڑھتی ہے، جو تو کریا کر رہی ہے مسلمان دھرم انوسار، یہ تیرے کو بینیفٹ دے رہی نہیں، یہ تو کچھ اور کارن ہوتا ہے۔ اب سب سمجھ میں آ جائے گا، دھیرے دھیرے آپ سرمنٹ کرتے رہنا پریبھاشا پربھو کی۔ اس کے بعد رابعہ کی مرتیو ہو گئی کچھ سمے، اپنا سمے پورا کر کے۔ دوسرا جنم رابی کا ایک بنسری نام کی پھر لڑکی کا ہوتا ہے۔ اتنی دھارمکتا میں اتنی لین وہ لڑکی، بہت بڑھیا گانے پر وہ کئی گاوے پرسدھ ہوگی، اور ساتھ میں ستوتی کرے ایشور کی ہردے سے بالکل ساری جیون۔ اس نے سنا تھا کہ جو مکہ میں پران تیارک دیتا ہے وہ سیدھا وشت جاتا ہے سورگ، یہ سورگ سے آگے کوئی نہیں جانتا، نہ ہندو نہ سکھ نہ مسلمان نہ عیسائی۔ سکھ کیونکہ کبیر پرمیشور ملے تھے نانک جی کو، تو گرو نانک دیو جی کو کبیر صاحب نے سچکھنڈ دکھایا تھا، وہ سچکھنڈ سکھ کہتے ہیں سچکھنڈ، لیکن وہ کیسے پراپت ہوتا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، یہ کوئی ان کو گیان نہیں بچاروں کو۔ تو اس پرکار وشت تک ہی یہ مسلمان سورگ تک ہی سیمت ہے، اور سنتوں نے بشت یعنی سورگ کو سب سے گھٹیا ستھل بتایا ہے۔ اس لڑکی نے یہ سوچا تھا کہ مکہ میں پران نکل جائیں پربھو تو سورگ مل جاوے، تو اس لڑکی نے یہ سوچ کر جب حج کرنے گئی مکہ میں، جب پہنچی وہاں جا کر کے اپنا یا گردن کاٹ دی، شیش چڑھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نیکسٹ جنم، اگلا جنم اس لڑکی کا ایک ویشیا کا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے اور کوئی دشکرم کے کارن، پچھلے سنسکار کے کارن وہ ویشیا بن جاتی ہے، گنکا بن جاتی ہے۔ اس دشکرم کو بھوگ کے، پورے جیون کو بھوگ کے وہ پھر پران تیاگ جاتی ہے، اور چوتھا جنم جو ہے 12 ورس کا بکایا تھا منو شریر کا، ایسے لگاتار سد بھکتی کے کارن 5, 4, 10, 20, 100 جنم بھی ہو جائے، لیکن اگر سد بھکتی پھر نہیں ملی تو وہ 100 کے 100 بھی ویرت اور 84 میں چوکس۔ اب تیسرا جنم اس لڑکی کا، شیخ تقی جو سکندر لودھی دلی کے بادشاہ کے دھارمک گرو ارتھات پیر تھے، ان کے گھر پہ کنیا کے روپ میں ہوا، اور 12 ورس کا پورا شریر کر کے اپنا وہ مرتو کو پراپت ہوئی، قبر میں دبا دیا گیا تھا۔ اس کبیر پرمیشر دیالو نے پھر کارن بنایا، شیخ تقی کے اندر ایسی پریرنا بن گئی، بن گیا دشمن، اور اس کا بینیفٹ اپنی بیٹی کو دینا تھا، اس رابعہ کو پھر جیوت کیا، ارتھات پھر اس کا نام کچھ اور تھا، پھر اس کا نام جیوت کر کے کمالی رکھا، اور وہ لڑکی کبیر پرمیشور کے ساتھ رہنے لگی، اور اس لڑکی کو پھر آگے بھوشیہ کی بھکتی دی اور ساتھ میں مکتی کی۔ گریب داس جی کہتے ہیں کبیر صاحب اپنے پیاری آتماؤں کے ساتھ ایسے رہتا ہے، جو بچھا گو کی نظر میں یوں سائن سنتے، بھگتوں کے پیچھے پھر یوں بھگت وچل بھگونتے۔ جو جن میری سرن ہے تا کہوں میں داسی، گیل گیل لاگیا پھیروں ہوں جب تک دھرتی آکاسے۔ کہ کبیر صاحب اپنی پیاری آتما جو ایک بار ان کی شرن میں آ جائے، پھر کال بھلو تو بکات بہکا لیتا ہے، لیکن پھر بھی دیالو یہ آ کر ہماری پھر مدد کرتا ہے۔ اب بھکت آتما آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ست کتھا سنکا آپ کا نیوارن اوشیہ ہوا ہوگا کہ بھگوان شری کرشن بھی پربھو ہیں، یہ ایک ہی برمنڈ میں ایک وبھاگی منتری ہیں، اور ان کے پتا کال ہیں جو 21 برمنڈ کے پربھو سمجھو، ایک برمنڈ میں ایک برما، ایک وشنو، ایک شیو، اور یہ سوئم بھی کال ایک برمنڈ میں برہم لوک کے اندر مہا برما، مہا وشنو، مہا شیو روپ میں رہتا ہے۔ और वो चतुर्भुज रूप में, वो जो इसका वास्तविक चतुर्भुज रूप है वो भी किसी को दर्शन नहीं होते। केवल ये चतुर्भुज रूप तीन लोग त्रिलोकीय विष्णु हैं, यही यहाँ पर दृष्टिगोचर होते रहते हैं। अब कबीर परमेश्वर और श्री कृष्ण भगवान के अंदर कितना अंतर है ये स्वयं समझ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण भी प्रभु हैं और प्रभु जैसे गुण होते हैं, जैसे मंत्री में भी राहत, मंत्री भी राहत दे सकता है, एक राज्य का मंत्री, प्रांतीय मंत्री, एक विभाग का मंत्री, और प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जो लाभ देगा वो मंत्री नहीं दे सकता, और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो लाभ देगा वो मंत्री कभी नहीं दे सकता एक प्रांत का। ऐसे ही समझना, जैसे मोरध्वज के पुत्र, राजा मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को जीवित कर दिया था क्योंकि उसकी आयु बकाया थी, लेकिन अपने ही सगे भांजे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जी को नहीं जीवित कर पाए, जिससे पांडवों का कुल नाश हो रहा था, इकलौते पुत्र थे उस समय। और भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी रो रही थी। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने सारा यादव कुल विनाश को प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी तीर लग जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वो वहां कोई बचाव नहीं कर पाए क्योंकि उनका ऐसा ही प्रारब्ध था, ये प्रारब्ध को नहीं चेंज कर सकते। मासा घटे न चल बध बिद न लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुर मेट कह ऊपर मार मेख। मासा घटे न चल बध, विधाता ने जो लेख लिख दिए, ना राम मिटा सके, ना श्री कृष्ण मिटा सके, ना श्री राम मिटा सके, ना ब्रह्मा विष्णु महेश खत्म कर सके, और ना ही ये निरंजन कर सके। विधाता कौन है? कबीर परमेश्वर। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पूर्ण ब्रह्म ही सारे कार्य को कर रहा है, अर्थात उसने संविधान बना रखा सबका, और उस संविधान में फेरबदल वो स्वयं ही कर सकता, अर्थात कर्म चेंज कबीर परमेश्वर ही कर सकता, हमारे कर्मों में फेरबदल और कोई नहीं कर सकता, हमारे संस्कार बढ़ा सके, हमारी आयु बढ़ा सके। कबीर परमेश्वर की महिमा आपने सुनी के सम्मन के पुत्र सेव को स्वयं सम्मन ने करद से काट दिया था, उसकी गर्दन काट डाली थी, और कबीर परमेश्वर ने जीवित कर दिया था, निशान भी नहीं था कि कभी कटा था। उसके बाद उनकी मुक्ति भी की और पार किया, ये तो समझो मोरध्वज और तामरध्वज जैसा उदाहरण हुआ, क्योंकि सेव की भी आयु बकाया थी। उसके बाद गाय को और गाय के बच्चों को दोनों को जीवित किया, उनकी भी आयु बकाया थी। उसके बाद सिकंदर लोधी के जलन का रोग ठीक किया, जो भी किसी साधना से नहीं हुआ। रामानंद की गर्दन सिकंदर लोधी ने काट डाली थी, कबीर साहब ने तुरंत जीवित कर दिए थे, उनकी भी आयु बकाया थी। वैसे मैं यहां कहूंगा कि उनकी आयु बकाया नहीं थी रामानंद जी की, क्योंकि कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उनको और उम्र बख्शी थी पहले ही, उस समय नहीं, पहले ही उनकी आयु बढ़ा रखी थी, क्योंकि जब कबीर साहब 5 वर्ष के थे रामानंद जी 104 वर्ष के थे, और जब सिकंदर लोधी से वार्ता हुई तब रामानंद जी लगभग 120 वर्ष से ज्यादा आयु हो चुकी थी। तो ये बाकी की आयु जो है कबीर साहब ने उनकी बढ़ाई थी, और ये महात्मा लगभग 150 वर्ष बताते हैं रामानंद जी जीवित रहे कबीर साहब की रजा थे, और उसी दौरान सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी, खत्म कर दिया था, 2 टुकड़े हो गए थे बॉडी के, शरीर के, तो कबीर साहब ने वो जीवित कर दिया था। ये भी मान लीजिए कि उनकी आयु बकाया थी, ऐसा ही सोचकर चलिए। आगे फिर वापस आ रहे थे जब कमाल नाम का एक लड़का, वो तो मृत वहां से डाल दिया गया था दरिया में, 2-3 दिन से वो बहती हुई लाश चली आ रही थी, वो सब चला आ रहा था, तो कबीर साहब ने वो जीवित किया, उसके संस्कार बकाया नहीं थे। उसके बाद یہ شیخ تقی کی لڑکی کمالی جو کہ کافی دنوں سے مرت ہو جانے کے بعد قبر میں اس کو دفنا رکھا تھا, انتیم سنسکار کیا ہوا تھا, اس کو قبر پھڑوا کے جیوت کیا, اس کی آیو بکانی تھی. یہ پرمان آپ کے سامنے پرتیکس ہیں. کبیر پرمیشور چاروں یگوں میں آتے ہیں اور چاروں یگوں میں ایک نام تو ان کا سپرسدھ رہتا ہے, اس میں کوئی بدل نہیں کرتے, کوئی بدلاؤ نہیں کرتے, اور انے دوسرے بھی روپ بنا کر کے آتے رہتے ہیں اور پھر بتا بھی دیتے ہیں کہ میرا واستو نام کبیر ہے. تریتا مائے جب ستیوگ مائے ست سکرت نام سے, تریتا آئے منندر نام سے. ان کا ورتمان نام منندر بھلے ہی تھا لیکن وہ بتا کرتے تھے کہ میں وہ کبیر پرمیشور ہوں, سری سرشتی کا رچنہار ہوں, میرا واستوک نام کبیر ہے. اور تریتا یگ میں منندر نام سے, دواپر میں کرونا میں نام سے, اور کلیگ میں اسی واستوک نام سے کبیر پرمیشور. ویسے ان کا واستوک نام کبیر ہے, اس کو کبھی کہیں جیسے یزرویید, یزرویید کبیر دیو, سیدھا نام ان کا کبیر دیو ہے, یہ کبیر دیو ہی کہلاتے ہیں. ہم اس کو ان کو کبیر صاحب کہتے ہیں, سیدھا کبیر بہت کم بولتے ہیں, اسے بول دیتے ہیں لیکن کبیر صاحب بولتے ہیں. واستو میں پربھو یہی ہے, اس لیے کبیر دیو ان کا واستوک نام ہے, اس لیے ویدوں میں وہ کبیر نام ورنت ہے جو پربھو کا واستوک نام ہے. جب تریتا یگ میں یہ پربھو آئے تھے اپنی پیاری آتماؤں کو اپنا ست سندیش پہنچانے کے لیے, اس میں کچھ مکھے درشٹانت آپ کو سناؤں گا. منندر نام سے وہ پربھو آئے ہوئے تھے, اس میں رشی منندر نام سے ان کو جانا جاتا تھا. اپنی ست بھکتی کا سندیش دیا کرتے تھے. ایک نل اور نیل دو بھکت آتما تھی, وہ بہت بھولے دماغ کے تھے لیکن پربھو میں لگن بہت زیادہ تھی, اور وہ شلپکار بھی تھے, انجینئر سمجھو. پہلے کوئی ڈگری نہیں ہوا کرتی پر نیچرل گن, قدرتی گن ہوا کرتے تھے. ان کو بہت بھینکر بیماری ہوگی, انہوں نے سبھی رشیوں سے آشیرواد بھی لیا, ان کے دوارا بتائی گئی سب سادھنائیں بھی کر چکے تھے پرنتو ان کو کوئی لابھ نہیں ہوا, بہت پریشان تھے. ایک دن ان کا بھاگ ودے ہوا کبیر پرمیشور کے ستسنگ میں, جہاں پر ہو رہا تھا ان کے پاس پہنچ گئے, اور جو ہی کبیر پرمیشور کی انہوں نے وچن سنے اور پھر آشیرواد لیا تو ایسے ہی ان کو آشیرواد دیا, سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھتے ہی وہ دونوں سوستھ ہو گئے. ان کی پھر ایسی شردا بنی اپنے پربھو میں, کبیر صاحب نے کہا بیٹا نام لو. انہوں نے کہا کہ ہم بھکتی تو کر رہے ہیں, ایسے ایسے اپنی سب کریائیں بتائی. کبیر صاحب نے بتایا کہ جو بھکتی تمہارے رشی لوگ تمہیں بتا رہے ہیں گرودیو, یہ تو برہم سادھنا ہے, اور برہم یہ سویم کال ہے, اور یہی سبھی کو نچا رہا ہے. بیٹا یہ بھکتی تیری تمہاری پورن نہیں ہے, ادھوری ہے. ہم نے پورن پرماتما کی بھکتی کرنی چاہیے جس سے ہمارا آپ کا جیون چھٹکارا ہوا ہے. اب وہ دکھی ہو رہے تھے, جب ان کو سکھ مل گیا تو کہا پربھو ہمیں اپدیش دے دو. نام دے دیا, شش بنا لیے. اب ندیوں کے کنارے پہ ریشیوں کے ستسنگ ہوا کرتے تھے. یہ دونوں بھکتاتما نل اور نیل بہت سیوا کیا کرتے تھے, بہت سیوک تھے, سادھو سیوی تھے, اور ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کر کے ان کے کپڑے دھوتے تھے, ان کے کوپین دھوتے تھے, برتن صاف کیا کرتے تھے, ان کو نہلاتے تھے, جب وہ سنان کرتے تھے تو کمر مسلتے تھے. ایسے ہی جب سماگم ہوا کرتے تھے تو نل اور نیل سبھی رشیوں سے پرارتھنا کر کے ان کے برتن, ان کے کپڑے, آدھی دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے لے جاتے تھے. دریا پر بیٹھ کر کے ستسنگ میں سنی ہوئی باتوں کی بہت چرچا کرنے لگ جاتے تھے, مست ہو جاتے تھے. اور کسی کا لوٹا بہ جاتا تھا, کوئی گلاس کھو گیا, کسی کا کرمنڈل گیا, کسی کا لنگوٹ کھو گیا, کسی کے دھوتی گم ہوگی, کسی کا کرتا گیا. ایسے وہ دو دو چر چر ایک دو وستو روز گم کرایا کرتے تھے. تب رشی لوگ کہا کرتے تھے, بھئی ہمارا گلاس نہیں, کوئی کہتا میری دھوتی نہیں ہے, کوئی کہتا میری کرمنڈل کہاں گیا تو تم صاف کرنے کے لیے لے کر گئے تھے, کوئی کہتا میرا لنگوٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہم نے تو معلوم نہیں داتا, ہم تو جو لے کر گئے تھے جو کہ تو لے آئے. دوسرے جو سیوک جاتے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نل اور نیل یہ دونوں ساتھی ہیں, اور وہاں بیٹھ کر پربھو کی چرچا کرنے لگ جاتے ہیں, برتنوں کو پانی میں بھگو گئے, کپڑوں کو پانی میں بھگو گئے, اور جو ستسنگ میں سنی ہوئی باتیں تھیں ان کی پھر چرچا کرتے تھے. آج گرودیو نے ایسا بتایا, آج گرودیو نے ایسی کہانی سنائی, او ہو ہو, اور جی وہ کپڑے بہ جاتے ہیں, یہ دھیان نہیں دیتے. رشیوں نے کہا بھائی نل اور نیل, بھائی تم ہماری سیوا مت کرو, ہم اپنی سیوا سوئم کر لیں گے بیٹا. اب ہم اتنے دور رہتے ہیں جنگل میں, کہاں سے تم روزانہ کرتا لائیں گے, کمیز لائیں گے, کہاں سے ہم دھوتی لائیں گے, کہاں سے روزانہ لوٹے گلاس کٹوری تھالی لائیں گے. بیٹا ہم اپنی آپ سیوا کر لیں گے, تم رہنے دو. رونے لوگ جاتے تھے, پیر پکڑ لیتے تھے, میں ہماری سیوا نہ چھینو داتا, اب کے بہت خیال کریں گے, نہیں گم ہونے دیں گے. پھر وہی حالت. ان رشیوں نے سوچا کہ ان بچوں کو منع کرتے ہیں تو ان کی آتما دکھ پاوا, یہ روتے ہیں, ہمیں پاپ لگے گا اگر سیوا چھینیں گے. تو ان کے گرودیو سے پرارتھنا کرتے ہیں, وہ کوئی سمادھان نکالیں گے. رشی منیندر جی سے کہا کہ آپ کے یہ دو سیوک بہت ہی سردالو ہیں, کوئی شک نہیں, بڑی لگاؤ ہے پربھو میں, پر ہمارے لیے تو یہ سردرد بن گئے. ہم منع کرتے ہیں, ہماری کپڑے مت دھو, ہمارے برتن صاف مت کرو, کیونکہ یہ لے جاتے ہیں چار وستو لاتے ہیں دو وستو واپس, ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ریسیور آپ ان کو کہو کہ ہماری سیوا نہ کریں, پر آپ کا آدیش مانیں گے یہ. ادھر سے جب نل نیل نے یہ بات سنی کہ گرودیو باب آدیش دیں گے کہ تم سیوا مت کرنا, اس سے پورب ہی ان کے گرودیو کے چرنوں میں گر کے دونوں یاچنا کرتے ہیں, پربھو ہماری سیوا نہ چھیننا داتا, کوئی سزا دے دینا. اب کہ ہم بالکل نہیں کوئی وستو گم کریں گے, ہم نہیں کریں گے داتا. رشیوں نے کہا جی ان کے بس کی بات نہیں, یہ جان بوجھ کر نہیں گم کر دے, یہ وہاں پربھو چرجا میں لین ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. کبیر صاحب نے کہا بھی ٹھیک ہے, خوب سیوا کرو بیٹا, آج کے بعد تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی وستو نہیں ڈوبے گی, ایون سٹون بھی, پتھر تک بھی نہیں ڈوبیں گے, اور لوہا بھی نہیں ڈوبے گا, وہ تیرا کریں گے. کپڑے اور برتن تو کہنا ہی کیا, سب کچھ نہیں ڈوبے گا تمہارے ہاتھ سے جو تمہارے ہاتھ سے سپرس ہو گیا. یہ بات چلتی رہی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نل اور نیل کے ہاتھ سے کوئی وستو نہیں ڈوبیا کرتی, کپڑے بھی بھرا ہوا پانی کا بیلا کٹورا جو کا تو اوپر ہی تیرتا رہتا تھا. کچھ دنوں کے بعد سیتا جی کا ہرن ہو جاتا ہے بنواس سے, جب بھگوان شری رام اور سیتا اور چھوٹا بھراتا شری لکشمن وہاں چترکوٹی میں رہا کرتے تھے. لنکا کا راجہ راون سیتا جی کو دھوکہ دے کے اٹھا لے جاتا ہے. کیسے اٹھا لے جاتا ہے کہ راون کا ماما مارچ ایک سرون مرگ شونے کا ہیرن بن کر گیا. وہاں سیتا نے ایک باغیچی لگا رکھی تھی, باڑی بو رکھی تھی, اس کو توڑنے لگا اور بہت سندر سونے کا ہیرن بہت سندر لگا. سیتا نے شری رام سے کہا کہ یہ ہیرن مجھے لا کر دے دو. شری رام نے کہا کہ کیا کرو گے ہیرن کا, कि नहीं अगर हिरण नहीं लाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अब देखो इतनी जिद की उसने, श्री राम ने सोचा। वो कहने की मृत्यु चाहे मृत मिलो चाहे जीवित ला कर दो मुझे। श्री राम जब उस हिरण के पीछे चलने लगे तो लक्ष्मण को आदेश देकर गए कि मुझे देर भी हो जावे चिंतित मत होना, और प्रथम तो तू मेरी खोज के लिए आना मत, और आए तो यहाँ सुरक्षा करके आना, जंगल का काम है। ठीक है आपका जो आदेश। अब जो हिरण था बहुत दूर भाग गया, श्री राम उनके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। आगे जाकर के वो अंतर ध्यान हो गया और आकाशवाणी हुई, भाई लक्ष्मण में मर गया, भाई लक्ष्मण में खा लिया, मुझे बचाओ। सीता ने कहा कि तेरे भाई पर आपत्ति है लक्ष्मण, तू जा। उसको किसी हिंसक पशु ने हानि पहुंचाई है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आवाज आत्मा रो रही है, पुकार रही है, तू जल्दी जा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश है कि यही रहना। सीता कहती है कि सीता जी ने कहा कि तेरे मन में खोट है, तू चाहता है कि तेरे भैया की मृत्यु हो जाए और तू मेरे साथ, तू मुझे रखना चाहता है। यहाँ तक जब शब्द कह दिया तब लक्ष्मण बहुत आंखों में आंसू भर गए और कहने लगा ठीक है माँ, आज तक जिंदगी में ये भाव नहीं हुआ था और ना ही होगा, क्योंकि बड़ी भाभी को माँ के तुल देखा करते थे। मैं जा रहा हूँ भैया की तलाश में, पर एक काम करना, ये चारों तरफ से श्री राम के आदेश से मैंने एक लाइन खींच दी है, रेखा, इससे बाहर मत जाना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण बहुत दूर पहुंच गया, श्री राम से मिला, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। श्री राम ने कहा कि तूने आना नहीं था लक्ष्मण। तब सारी कथा बताई कि भाभी ने, सीता जी ने बहुत मजबूर कर दिया मुझे, बहुत अपशब्द कह दिए, मैं रुक नहीं सका वहां पे। वापस आ रहे हैं, उधर से रावण, लंकापति रावण अपनी बहन सरूपणखा का बदला लेने के लिए, कहते हैं रावण की बहन सरूपणखा लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, उसके स्वरूप ने देखकर आसक्त हो गई थी। लक्ष्मण ने बहुत मना किया था, उसने बहुत जिद कर दी, हद से ज्यादा बढ़ गई, और बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। वो फिर रावण के पास गई थी, रावण से सब कहानी बताई, तो रावण ने उस प्रतिशोध को लेने के लिए ये सब रचना रची। एक साधु का वेश बनाकर सीता की कुटिया पर आकर कहा कि माई भिक्षा दो। पहले साधु को द्वार से खाली नहीं जाने दिया जाता था। सीता जी ने कहा कि आप यहाँ अंदर आकर ले जाओ, यहाँ कुटिया से ले जाओ। जब ही रावण ने आगे जाना चाहा कुटिया की तरफ, रेखा के नजदीक आया तो उसमें से लपट निकली नो आग की, एकदम फूक दे जैसे बिजली का स्पार्क हुआ करे। एकदम दो कदम वापस गया रावण और कहा कि तुम साधु को मारना चाहते हो, तुमने ऐसा यहाँ पर ये रचना रची हुई है, अगर भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दो, नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा। पहले संतों की महिमा की आड़ में राक्षस लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। सीता जी ने सोचा साधु महात्मा है के फर्क पड़े, और लेकर आटा और उस रेखा को पार करके उसकी झोली में डालने लगी, तभी यहां से बाजू पकड़ के और अपने पीछे लटका लिया और लेकर आकाश मार्ग से उड़ गए और जाके अपने नौलखा कैद में बंद कर दिया। वहां बहुत यातनाएं दी। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता नहीं थी, बहुत बुरी तरह रोते हैं, इधर उधर डकराते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, रो रो के। उसी समय ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे हैं। शिव और पार्वती देख रहे हैं और भगवान शिव श्री राम को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं ऊपर से ही। पार्वती अर्थात सती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि ये त्रिलोकी नाथ विष्णु अवतार जे दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। सीता सती जी ने कहा, अर्थात पार्वती समझो, पार्वती तो बाद में बनी थी लेकिन फिर भी उसी से, क्योंकि आज पार्वती जी की महिमा गाई जाती है। पार्वती ने कहा कि ये भगवान थोड़ा ही हो सके, तो राजा दशरथ का पुत्र है। शिव ने कहा कि मैं जानता हूं इसकी महिमा को, तू नहीं जानती, ये प्रभु है, ये श्री हरि ही आए हुए हैं। पार्वती ने कहा कि भगवान है तो रो क्यों रहे हैं कि इनकी पत्नी को किसी ने उठा लिया। अब यहां विचार करना भक्तात्मा, ये दास जो बताना चाहता है इन कथाओं को फिर सुना के, किस काल के हाथ में सबका सबकी बुद्धि है। ये कहता जब चाहे मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, जब चाहे ज्ञान को हर लेता हूँ, और जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि उसके पास रिमोट है। तो यहाँ श्री राम की बुद्धि ऑफ कर दी कि उसको मालूम नहीं कि सीता को कौन उठा ले गया। अब यहाँ क्या कहते थे हमारे जो अज्ञानी गुरु थे पहले, वो कहते थे लीला कर रहे थे, वो तो सब जानी जान थे, सब मालूम था, पर लीला कर रहे थे। या के लीला, इसलिए लीला कर रहे थे कि 33 करोड़ देवताओं को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, उनको छुटवाना था ना, इसलिए सीता का अपहरण करवाया। चलो वो बात तो हम मान लेंगे, अब ठीक है भगवान ने कोई लीला करनी थी कि देवताओं को छुटवाने के लिए कोई बहाना बनाना था, बना लिया, सीता उठ गई, और इससे बड़ा बहाना के होगा। और उसी समय फिर दुनिया से पूछने की क्या लीला थी, पत्नी उठ जाए फिर लीला करे। उसी समय ले कर सेना और दबोचते गर्दन रावण की, पता तो था ही, जानी जानते, तो फिर ये लीला की आवश्यकता नहीं थी, और तो लीला मान सके, यहाँ लीला नहीं थी, क्योंकि काल इनको नचा रहा है और ये हिस्ट्री पहले ही लिखी हुई है काल ने। क्योंकि जब गौतम ऋषि ने की पत्नी के पास इंद्र दुष्कर्म करने के लिए गया था, जब गौतम ऋषि ने अपने आंखों देख लिया था उनको, तो श्राप दे दिया था अपनी पत्नी अहिल्या को, कहा था कि तू पत्थर की होगी। अहिल्या ने कहा था भगवान, हे पतिदेव, हे ऋषिवर, मेरा दोष नहीं है, ये राक्षस इंद्र, ये दुष्ट आत्मा आपका स्वरूप बना करके मेरे पास आया था और मैं पहचान नहीं सकी, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम जी ने कि तुम्हारे 1000 स्त्री की योनियां हो जाएंगी सारे शरीर पर, और अपनी पत्नी को गुस्से में श्राप दे दिया, तू पत्थर की होगी। तब उसने बहुत विनय की थी अहिल्या ने कि मेरे को कुछ रहम कर दो, मेरा अक्षमा कर दो, मेरा अपराध नहीं था। तब गौतम ऋषि ने कहा कि देखो वचन तो गया, मेरे से कहा गया ये वापस नहीं हो सकता, कुछ राहत दे दो। अहिल्या ने कहा और कहा पूछा कि मेरी कब मुक्ति होगी, मैं पत्थर की बनी हुई हूँ, बनूंगी तो फिर उसके बाद कब मैं वापस आपके पास आऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में विष्णु भगवान स्वयं श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ बनकर जाएंगे अयोध्या में, उनको वनवास होगा और वहाँ सीता का की तलाश में होंगे, उस समय तेरे ऊपर वो खड़ाव झाड़ेंगे, और उन खड़ावों के झाड़ते ही उनकी रज चरण रज से तो फिर देवांगना बनकर मेरे पास आएगी।